सुर्खियों में
सुर्खियों में कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। प्रोफेसर जोशी, आपका आकाशवाणी में स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी, इस अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा में प्रतिभाग के लिए मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार आपका।
जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री पांच देशों के दौरे के अंतर्गत आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, जहां पांच नॉर्डिक देशों नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी उपस्थित थे। इन सभी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। रणनीतिक साझेदारी और सहयोग पर इस शिखर सम्मेलन में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच हुई वार्ता के प्रमुख बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने वार्ता खत्म होने के बाद जानकारी साझा की, जिसके कुछ अंश हम अभी थोड़ी देर में सुनेंगे। अंशु जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस भारत नॉर्डिक समिट के महत्व को आप एक विशेषज्ञ के तौर पर कैसे आंकती हैं और आपके अनुसार इस समिट का सबसे अहम आउटकम क्या रहा?
सोनू जी, पहले तो जब हम इस नॉर्डिक क्षेत्र की ओर देखते हैं यूरोप के, तो ये तकनीक और व्यापार में सहयोग की दृष्टि से, ये प्रोफेशनल मोबिलिटी में सहयोग की दृष्टि से हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और यदि हम नॉर्वे को देखें तो उसे गेटवे टू आर्कटिक कहा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी जो मैरिटाइम पॉलिसी है उसको बहुत डायनामिक और लचीला बनाते हुए, जहां हिंद महासागर में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की क्षमता अर्जित की है, तो वहीं जब हम आर्कटिक रीजन की ओर देखते हैं तो वहां लाइक माइंडेड देशों के साथ मिलकर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंचे, वहां के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से उनको कॉन्फर किया गया। थर्ड नॉर्डिक भारत समिट जो है उसमें उन्होंने शिरकत की है। यदि हम इस नॉर्डिक समिट को देखें जो भारत के साथ होता है, ये एक बहुपक्षीय ऐसा कूटनीतिक फोरम है जिसमें कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड भारत के साथ जुड़े हैं और ये मिल करके किस तरह से एक जो ऑप्टिक्स बेस्ड बायलेटरल रिलेशंस होते हैं उनको कैसे आउटकम बेस्ड, जो कि टेंजिबल आउटकम बेस्ड रिलेशंस है, उनकी ओर ले जाया जाए, इस पर सतत काम हो रहा है। तो यदि हम पिछले समिट्स को देखें तो 2018 में पहला समिट स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। इसमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, किस तरह से कोविड के बाद हम एक इकोनॉमिक रिकवरी की ओर जाएं, क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट को कैसे योगदान दिया जाए, इस पर बातचीत हुई थी। जब हम दूसरे समिट को देखते हैं जो 2022 में कोपेनहेगन में हुआ था, उसमें मैरिटाइम इंडस्ट्री, सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस था। और थर्ड समिट जो ओस्लो नॉर्वे में हुआ है, तो इसमें किस तरह से सिक्योरिटी और डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़े, सामुद्रिक जो अलग अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें कैसे सहयोग करें, AI को लेकर के, फिर एक आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स को लेकर के, ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, क्योंकि नॉर्वे के साथ अभी हमने ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी अनाउंस की है।
अंशु जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, क्योंकि ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की आपने बात की है, तो आइए सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने हमें इसके बारे में क्या बताया, फिर चर्चा को जारी रखेंगे।
ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। और हमारे बीच इस यूनिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के गठन से हम स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ टेक को भारत के टैलेंट के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए ट्रस्टेड सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। फ्रेंड, भारत नॉर्डिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे व्यापक रिसर्च और इनोवेशन टाइज भी है। इसे सुदृढ़ करने के लिए हम साथ मिलकर यूनिवर्सिटी, लैब्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच लिंकेजेज बढ़ाएंगे।
सो बहुत सारे बहुआयामी जो फैसले हुए हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को लेकर और इनोवेशन को बढ़ावा देने को लेकर, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने जो हमें बताया है, आप हमें बताएं कि किस तरह से ये एक सिनर्जिस्टिक है इन नॉर्डिक देशों की जो क्षमताएं हैं, जो इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो भारत की विकास और रणनीतिक प्राथमिकताओं से पूरी तरह मेल खाता है? आपको लगता है ये बहुत ही सिनर्जिस्टिक पार्टनरशिप?
बिल्कुल सोनू जी, आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया। यहाँ एक सिनर्जी है, एक सिंबायोटिक रिश्ता हमें बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि भारत के पास स्केल है, रिसर्च की क्षमताएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग की क्षमताएं हैं, और जहां तक बात होती है सामुद्रिक एक्सप्लोरेशन की, तो हमने पिछले 10-11 वर्षों में, मैंने आपको यही बताया कि हम पहले हमने मॉरिशस से सागर डॉक्ट्रिन हिंद महासागर में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल के हम प्रणेता बने, हमने उसकी उद्घोषणा की। फिर हमने उसे महासागर म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल कहा, हिंद महासागर के सामुद्रिक क्षेत्र में। अब हम आगे बढ़े हैं, अब हम आर्कटिक की ओर देख रहे हैं, और जब हम इन नॉर्डिक देशों को देखते हैं जिसमें आइसलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, तो हम जब इन देशों की ओर देखते हैं तो पता चलता है कि इनके लिए आर्कटिक क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। इनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो सकता है यदि क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र जो लेवल है, सामुद्रिक लेवल जो है वो लगातार जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसकी वजह से इनको खतरा है। और यहां पर भारत एक बहुत सशक्त साझेदार के, सहयोगी के रूप में इनके साथ में खड़ा है। तो इसीलिए जो फोकस है इस समिट का, वो इस प्रकार की रेजिलियंट, फ्यूचर रेडी तकनीकी क्षमताओं को विकसित करना है, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को इस तरह से आगे लेकर के जाना है जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और ग्रीन टेक्नोलॉजीज को प्रमुखता दी जाए। तो इसमें सरकार भी और जो इंडस्ट्रीज साथ में जुड़ी हुई हैं उनको लेकर के दोनों ही तरफ से ये बातचीत हुई है कि क्लीन ग्रोथ होनी चाहिए, क्लीन ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना चाहिए, इसमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को आगे बढ़ाने की बात होती है। तो भारत और नॉर्वे ने इसीलिए कल ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का उद्घोष भी किया है। तो ग्रीन शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना, किस तरह से बेहतर ओशन मैनेजमेंट किया जा सकता है, इसमें फिर देखिए व्यापार भी आ जाता है, रिसर्च भी आ जाती है, शिक्षा भी आ जाती है, को मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाती है, बहुत बड़ा विस्तार का ये पूरा क्षेत्र है जिसकी बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री कर भी रहे थे।
सो अंशु जी, जो आप विस्तार की बात कर रही है, ये एक लगातार निरंतर प्रयास है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा जो एफ्टा कंट्रीज के साथ हुआ है उसमें नॉर्वे और आइसलैंड शामिल है, फिर इंडिया ईयू एफटीए हुआ उसमें डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन जो हैं वो की पार्टनर्स हैं, ये सारे नॉर्डिक कंट्रीज हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट है ये जो करार हुए हैं, इसके बारे में सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या बताया।
अपने संबंधों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हमने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण पहल की है। अक्टूबर 2025 से नॉर्वे, आइसलैंड और अन्य एफ्टा देशों के साथ हमने ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया, और कुछ ही महीने पहले हमने भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन भी भागीदार है। इन महत्वाकांक्षी ट्रेड एग्रीमेंट से हम भारत और नॉर्डिक देशों के साथ संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहे हैं।
क्या लगता है आपको अंशु जी, ये जो स्वर्णिम युग की बात करी है, जो ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर की भी उन्होंने इसी संदर्भ में बात करी कि कैसे हम सब एक चाहते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ हो पूरे विश्व में और मल्टीलैटरलिज्म हो, जिसकी वजह से हम सब नेचुरल पार्टनर्स हैं क्योंकि हम सभी इन वैल्यूज में विश्वास रखते हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है आज के ऐसे युग में जहां विश्व में बहुत उथल पुथल चल रही है?
सोनू जी, जब हम अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो वैश्विक राजनीति में एक फ्लक्स का समय है, संकट का समय है। कोविड-19 की काली छाया से निकले थे तो रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया, और यदि ये काफी नहीं था तो अभी पश्चिम एशिया में जिस प्रकार से संघर्षपूर्ण स्थिति बनी हुई है, भारत लगातार इसीलिए रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करता है, वैश्विक स्तर पर जो तमाम इंस्टीट्यूशन है उनमें रिफॉर्म की बात करता है, नियमों पर चलने की बात करता है। तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय नियम कानूनों को कैसे हम और सशक्त कर सकते हैं, यूएन चार्टर को हम किस तरह से उसका पालन कर सकते हैं, उसको थोड़ा सशक्त बना सकते हैं, सुदृढ़ बना सकते हैं, ताकि अलग अलग जो ये पश्चिम एशिया के और यूरोप के संकट है ये समाप्त हो।
जी
हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी हम लगातार इस प्रकार की संघर्षपूर्ण स्थितियां बनी हुई देखते हैं। तो ऐसे में जो ये नॉर्डिक के देश हैं, ये आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज की या रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करने की बात करें, तो ये भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। ये वो देश है जो भारत के साथ लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों से इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म की मांग करते हैं। यूएनएससी में
जी
भारत की जो परमानेंट मेंबरशिप की बात हम करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, और भारत
बिल्कुल
जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप को ज्वाइन करने की बात हो रही है भारत की, उसमें भारत का समर्थन करते हैं। तो ऐसे में एक मल्टीपोलैरिटी, मल्टीलेटरलिज्म, इशू बेस्ड एंगेजमेंट की बात आती है, जिसको भारत लगातार प्रमोट करता है, और
जी।
नॉर्डिक के तमाम देश जो हैं सोनू जी, वो भारत का इसमें साथ देते हैं।
तो ये जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, इसके प्रति जो कमिटमेंट है नॉर्डिक देशों की, भारत की, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ये सुनते हैं।
वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे, और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है।
सो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहीं प्रधानमंत्री ने, और एक और एस्पेक्ट है ट्रेड का, आपसी व्यापार का, अंशु जी उसके बारे में आप क्या कहेंगी, जो बायलैटरल ट्रेड है नॉर्डिक कंट्रीज के साथ भारत का, उसका पिछले 10 वर्षों में जो विस्तार हुआ है, उसके बारे में अगर आप हमें बता सकें।
बिल्कुल सोनू जी, और यहाँ पर भारत एफ्टा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है, जिसको हम टेपा के नाम से जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम एफ्टा देशों की बात करें तो इनमें आइसलैंड, लिंकनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड आते हैं, या नॉर्वे हमारा एक प्रमुख सहयोगी बन के उभरा, और बाकी के जो ये 3 सदस्य देश हैं, इनके भी भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। तो अभी हमारा जो ट्रेड है इन देशों के साथ वो $19 बिलियन से
जी.
$20 बिलियन तक का होता है। तो इसको ये तमाम देश भारत के साथ मिलके 2030 तक $30 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं, और इसमें एक किस प्रकार से $100 बिलियन का भारत में निवेश हो, इसकी बात हो रही है, क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज हैं, हम सशक्त हैं, हम सुरक्षित हैं। तो एक हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हम चाहते हैं, हमारे लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए वो आवश्यक है, और वहीं इन देशों को भारत जैसे देश की आवश्यकता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो नॉर्वे के पास सबसे बड़ा यदि हम देखें पूरे विश्व में तो गवर्नमेंट पेंशन फंड है, तो वहां ये एक इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से हमारे लिए FDI बढ़ाने, और मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से नॉर्वे को भारत जैसे सहयोगी मिलने की दृष्टि से, प्रोफेशनल्स मिलने की दृष्टि से, देखिए कितनी अच्छी सिम्बायोटिक एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ती है। इसके अलावा भारत और फिनलैंड ने अनाउंस किया है कि अभी गांधीनगर गुजरात में सितंबर 2026 में एक वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम को दोनों मिलकर साथ में होस्ट करें। तो यदि व्यापार के क्षेत्र में बात करें तो ये एक एफ्टा देशों के साथ और बायलेटरली भी लगातार भारत जो है वो मार्केट एक्सेस को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, सर्विसेज को, मोबिलिटी को लेकर के आगे बढ़ रहा है।
सो जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा कि पिछले 10 वर्ष में जो बायलेटरल ट्रेड है नॉर्डिक कंट्रीज और भारत के बीच में, वो 4 गुना बढ़ा है, और 200% बढ़त हुई है जो इन्वेस्टमेंट भारत में हुई है नॉर्डिक कंट्रीज से। सो अब जो ये बायलेटरल लेवल पर भी स्वीडन के साथ, नॉर्वे के साथ जिस तरह के करार हुए हैं, आपको लगता है कि भारत अब एक बहुत ही आकर्षक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर के आ रहा है? यहां इतनी बड़ी मार्केट है और इतना बड़ा यूथ टैलेंट है,
निश्चित
संक्षेप
पर
में बताएं। जी
जी सोनू जी, देखिए पूरे विश्व की जो यूथ पॉपुलेशन है उसका 22% भारत के पास है, और जिस प्रकार की परिस्थितियां अपने अपने यहां है वो तमाम निवेशक देशों के लिए अति आकर्षण का केंद्र है। यही कारण है कि एफ्टा की आप दृष्टि से देखें, यूरोपियन यूनियन की दृष्टि से देखें, यूरोप के देशों की दृष्टि से देखें, ये भारत में निवेश करने में अपनी उत्सुकता को लगातार बढ़ा रहे हैं। और निवेश कर रहे हैं।
जी, सो ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। भारत को वहां की उन्नत टेक्नोलॉजी प्राप्त हो रही है, उनको हमारी जो क्षमता है, हमारा जो टैलेंट है, हमारा बाजार प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। और हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री अब इटली की ओर रवाना होंगे और हम आपको जानकारी देते रहेंगे। सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ, नमस्कार।
सुर्खियों में